ओम शांति। तो हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आज की सुंदर सुहानी एवं रूहानी शाम में मैं सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के चेयरपर्सन स्क्वाड लीडर रिटायर्ड अशोक गाबा जी एवं नेशनल कोऑर्डिनेटर्स रेस्पेक्टेड राजयोगिनी बीके शुक्ला दीदी एवं समस्त टीम मेंबर्स एसएसडब्ल्यू की तरफ से आप सभी का ज्ञान सरोवर के इस पावन और दिव्य प्रांगण में जेसीओज और इंस्पेक्टर्स के लिए किए जा रहे सेमिनार ऑन सेल्फ एम्पावरमेंट में हार्दिक स्वागत करता हूं मैं हमारे मंच पे आसीन होने वाले अतिथियों का सर्वप्रथम स्वागत करूंगा। मंच की तरफ मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी आदरणीय शुक्ला दीदी से कि वे मंच पे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हुए हम आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की और दिल्ली स्थित हरिनगर सब जोन की आप डायरेक्टर हैं। मैं रिक्वेस्ट श्री प्रखर त्रिवेदी जी कमांडेंट बीएसएफ रायगंज टू बी ऑन द स्टेज। प्लीज कम सर। जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत। मैं आदरणीय कोऑर्डिनेटर अशोक गाबा रिटायर्ड चेयरपर्सन एसएसडब्ल्यू का भी स्वागत करता हूं मंच पे। प्लीज कम सर। हाँ कमांडर गोसाल सर से रिक्वेस्ट है कि उन्हें कमांडर शिव सिंह इंडियन नेवी डीआरडीओ हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली आपका स्वागत है। कमांडर इंडियन नेवी आशीष बहनोट फ्रॉम बेंगलोर आपका भी मंच में स्वागत है सर। मैं अब अपनी बहनों से निवेदन करूंगा कि वे हमारे अतिथियों का फ्लावर्स और बैचेस का वेलकम करेंगे। उससे पहले हम दो मिनट का एक गीत सुनेंगे और परमात्मा को याद करेंगे और इस कार्यक्रम की सफलता हेतु ब्लेसिंग्स लेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि वो मंच पर आसीन हमारे अतिथियों का फूल के गुलदस्ते द्वारा और बैचेस द्वारा स्वागत करेंगे। श्री प्रखर त्रिवेदी जी अमरंत बीएसएफ रायगंज अशोक गाबा जी चेयरपर्सन एसएसडब्ल्यू हमारे बीच कमांडर कुमावत सर भी आ चुके हैं उनका भी बहुत स्वागत है सर। प्लीज वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहनों को एक बार जोरदार तालियां बहनों के लिए। अब हम एक सुंदर गीत सुनेंगे वेलकम सॉन्ग के रूप में। मैं इनवाइट करता हूं बीके नितिन भाई को। बीके नितिन भाई हमारे इस संस्था के कुमार भाई हैं यूथ हैं और पिछले करीब 20 वर्षों से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 15 सालों से आप यहां पर समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। कॉलेज टाइम में आप एक एनसीसी के स्टूडेंट रहे हैं और आपने जो रिपब्लिक डे परेड होती है आरडीसी परेड एनसीसी की उसमें सीनियर अंडर ऑफिसर के रूप में महाराष्ट्र जोन को महाराष्ट्र डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट किया उसके लिए जोरदार तालियां। बहुत गिफ्टेड आप सिंगर हैं तो आज हम सबके समक्ष एक सुंदर स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। बीके नितिन
शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से ज्ञान सरोवर का सजा है आंगन भारत माँ के दुलारों से मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से ज्ञान सरोवर का सजा है आंगन भारत माँ के दुलारों से स्वागत और सत्कार का मौसम हो स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में हिले मिले सुमन सफलता के खिले के साथ हमारे आप चले आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में हिले मिले सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले नया नहीं ये बहुत पुराना नया नहीं ये बहुत पुराना अपनों का संबंध है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है शुभ स्वागत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सब का संकल्प है राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सब का संकल्प है राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है तभी तो परिवर्तन मूरत है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। थैंक यू।
आप शुक्ला दीदी से प्लीज बुके लेके जाएंगे, आइए एक बार पुनः जोरदार तालियां। और आगे भी हमारे कार्यक्रम में आप हमें इसी प्रकार से अपने अच्छी अच्छी मधुर आवाज से हमारा मनोरंजन करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पे बुलाऊंगा कमांडर शिव सिंह भारतीय नौसेना से, जो वर्तमान में सर्विंग ऑफिसर हैं और नई दिल्ली DRDO से आए हैं। संक्षेप में आपका परिचय इस प्रकार से कि आपने अपनी ट्रेनिंग NDA से ली, उसके बाद नेवल एकेडमी से ट्रेनिंग करते हुए 1996 में भारतीय नौसेना में आप कमीशन हुए। आप भी एक फौजी परिवार से हैं, आपके पिता भी रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं, और इस राजयोग मेडिटेशन से आप बचपन से जुड़े हैं अपने स्टूडेंट लाइफ से। और सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की जो ये प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, इसकी जो ट्रेनिंग फैकल्टी है, इसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक बार हम पुनः जोरदार तालियों से उन्हें धन्यवाद देते हैं कि जो भी कार्यक्रम आप देख रहे हो, जो भी आपके हाथ में ब्रोचर है, उसकी संकल्पना करना, उसको रचना, उसको बनाना, उसको डिजाइन करना सब आप करते हैं। आप इंडियन नेवी के साथ ब्रह्मोस मिसाइल से भी जुड़े रहे, और वर्तमान में आप जो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल ट्रेनिंग है DRDO भवन नई दिल्ली में, वहां आप कार्यरत हैं पिछले 4 साल से। और हाल ही में जब हमारा नेवी डे मनाया गया था 4 दिसंबर 2016, तो तब नेवल हाउस जहां पे हमारे एडमिरल लानबा जी रहते हैं, वहां पे प्रधानमंत्री जी का आना हुआ और कमांडर शिव सिंह को चुना गया इंडियन नेवी से प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ करने के लिए अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द इंडियन नेवी। एक बार पुनः जोरदार तालियां आपकी। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा शिव सिंह भाई से कि वो हमें एक तो वेलकम एड्रेस देंगे, हमें इस सेमिनार के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ हमें SSW फिल्म भी दिखाएंगे जो हमें इस पूरे विंग की इतिहास के बारे में संक्षेप में बताएगी। तब तक मैं निवेदन करूंगा हमारे मंच पे आसीन गेस्ट से कि चूंकि फिल्म चलेगी तो वी कैन हैव द ऑप्शन ऑफ थोड़ा सा हम आगे आके बैठ जाएंगे ताकि हम भी अच्छे रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।
ओम शांति। आज से ये 4 दिन का हमारा जो एनुअल फंक्शन होता है साल में एक बार, जिसमें हम देश के कोने कोने से हमारे सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल्स को बुलाते हैं, इसका ये स्वागत सत्र है। इसमें आप सब जो देश के कोने कोने से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से पधारे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबका हमारी आदरणीय दादी जानकी जी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से, हमारे चेयरपर्सन, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर और सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये कार्यक्रम शुरू होने से करीब 4 महीना पहले ही हम लोग इसके फोल्डर बनाते हैं, सभी फोर्स हेडक्वार्टर्स को देते हैं, जहां तक हो सकता है DGs को मिलकर उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए नॉमिनेशन करें। और आप सब अवगत हो कैसे फोर्सेस में लास्ट तक कई बार पता नहीं चलता कि डिसीशन क्या है, नॉमिनेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कई बार कोई नॉमिनेशन होता है कैंसिल हो जाता है, कई बार हमें एकदम लास्ट में बताया जाता, अच्छा ये हमारी फोर्स से भी लोग आएंगे, तो बहुत लास्ट तक हमको भी नहीं पता होता कि कितने लोग आ रहे हैं। लेकिन इतने सालों से मैंने देखा है कि ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है कि हम में से जो लोग यहां पहुंच पाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे हमारी फोर्सेस कितनी संख्या है, सभी इतने सारे आप फोर्सेस के वर्ग हैं और सभी आर्म्स में इतने सारे लोग हैं, तो उसमें से बहुत ही एक छोटा सा फ्रैक्शन ये पूरे साल में जब एक बार हम ये 3-4 दिन का प्रोग्राम करते हैं तो यहां पहुंच पाते हैं। तो इसलिए आप सबके लिए भी एक बार जोर से तालियां, बहुत बहुत आपका भाग्य है कि आप इस प्रोग्राम में पहुंच पाए। ये प्रोग्राम सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के द्वारा किया जा रहा है और कई बार लोग जब इधर आते हैं तो ब्रह्मा कुमारी इसको देखते हैं और ये कनेक्शन उनको इतना स्पष्ट नहीं होता कि ये सिक्योरिटी सर्विसेज विंग क्या है। तो संक्षिप्त में मैं ये कहूंगा कि ब्रह्मा कुमारी इसकी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, RERF। RERF के अंतर्गत हम समाज के अलग अलग वर्गों के लिए कार्य करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, यूथ विंग है, एजुकेशन विंग है, मेडिकल विंग है, साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग है, पॉलिटिकल विंग है, एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग है, इस तरह से करीब 19 विंग्स हैं। और उसमें से एक विंग है सिक्योरिटी सर्विसेज विंग जो देश के मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेज के लिए प्रोग्राम करते हैं। ऐसे ये एकेडमी की स्थापना 1995 में हुई और तब से इसके कार्यक्रम शुरू हुए, लेकिन सिक्योरिटी सर्विस विंग की स्थापना लेट हुई 2001 में, क्योंकि शुरू में बहुत सारे हम लोग सब फौज में हम लोग सोचते थे कि इस तरह की ट्रेनिंग का शायद हमारे जीवन से, हमारे पर्सनल लाइफ से या प्रोफेशनल लाइफ में शायद इस ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे ये जो एक हमारा हमने मान्यता बनाई थी ये बदल रही है और 2001 में हमारे पास भारतीय नौसेना के उस समय प्रिंसिपल डायरेक्टर नेवल ट्रेनिंग होते थे कमोडोर बाजवा, वो एक एजुकेशन विंग के प्रोग्राम में आए और जब उन्होंने सारे कार्यक्रम देखे, कई सारे प्रोग्राम स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस तो फोर्सेस में होती है और आप सब लोगों के लिए प्रोग्राम कराते हो सिवाय आप फोर्सेस के लिए नहीं कराते। तो तब फिर पहली बार इस विंग की स्थापना हुई 2001 में और मुझे खुशी भी है और गर्व भी है कि वो भारतीय नौसेना ने शुरू की। और अभी भी आप देखेंगे, ये भी एक कोइंसिडेंस है कि इस स्टेज के इस साइड भी नेवी के ऑफिसर सबसे ज्यादा है और स्टेज के उस साइड भी सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन इंडियन नेवी से है। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन हाथ खड़ा करेंगे नेवी से जितने लोग आए, क्योंकि करीब 20 सेलर्स का नॉमिनेशन था और 15 कुछ ऑफिसर्स है, तो एक सिंगल फोर्स में सबसे ज्यादा इंडियन नेवी का आज भी रिप्रेजेंटेशन है। और शुरू से जब से ये विंग्स बनी और हर साल ये प्रोग्राम होते हैं तो कई फोर्सेस कभी नॉमिनेट करते हैं कभी नहीं करते हैं, चलता रहता है, लेकिन नेवी मैंने देखा कंसिस्टेंटली इन प्रोग्राम्स में नॉमिनेट करते हैं। तो जब ये शुरू हुआ तो सिर्फ बहुत छोटा रूप था और क्योंकि इंडियन नेवी ने बोला तो कुछ ऑफिसर्स के लिए प्रोग्राम किया था, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, प्रोग्राम्स करते गए, तो कुछ ऐसे विशिष्ट सीनियर ऑफिसर्स का इन प्रोग्राम से जुड़ना हुआ, जैसे हमारे भूतपूर्व वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल नायडू साहब थे, हमारे नेवी के फॉर्मर चीफ सुरेश मेहता, एडमिरल सुरेश मेहता। तो हम लोग ने जब शुरू किया तो कुछ छोटे प्रोग्राम होते थे, सिर्फ हेडक्वार्टर में होते थे और आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स के लिए होते थे, लेकिन उन्होंने प्रेरणा दी कि सिर्फ ऑफिसर्स के लिए नहीं, सभी के लिए होने चाहिए, ऑफिसर्स के लिए भी होने चाहिए, सब ऑफिसर्स के लिए भी होना चाहिए। उसके बाद सेकंड प्रेरणा ये हुई कि सिर्फ आपके हेडक्वार्टर में ही नहीं होना चाहिए, फील्ड फॉर्मेशन में भी होना चाहिए, क्योंकि फोर्सेस की बहुत लंबी चौड़ी संख्या है और हम कितना भी भेजें तो आपके यहाँ कितने लोग आ सकते हैं, बहुत थोड़े लोग आ सकते हैं, तो जब तक आप हमारे यहाँ फील्ड फॉर्मेशन में नहीं आएंगे तब तक बहुत लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिल सकेगा। तो इस तरह से रूपरेखा बढ़ती गई और 2009 में हमारे पास ऐसे एक प्रोग्राम में DGBPR&D आए जो कि पूरे पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस और स्टेट पुलिस की ट्रेनिंग का जो जिनकी जिम्मेवारी है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट DG, उनके जो DG थे प्रसून मुखर्जी, वो आए और उन्होंने जब ये कार्य देखा तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस क्यों, पैरामिलिट्री फोर्सेस को इसकी ज्यादा आवश्यकता है, पुलिस फोर्सेस को ज्यादा आवश्यकता है। और तब से पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस के भी नॉमिनेशन हुए और अभी हमने देखा कि पिछले 4-5 साल से, जब से 2014 में हम लोगों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पहली बार सिक्योरिटी सर्विस विंग को एम्पैनल किया, तो पिछले 3-4 साल से बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे पूरे देश में चारों कोनों में कई सारे फॉर्मेशंस में हम लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए, और पिछले 3-4 साल से मैं समझता हूं कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत कम किया। पैरामिलिट्री फोर्सेस की इतनी डिमांड है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में सारे फ्रंटियर्स, सारे सेक्टर्स, उसके बाद CISF में उनके सारे ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, सारे करीब 25 ऑपरेशनल यूनिट्स, एयरपोर्ट सेक्टर, SSB के सारे फ्रंटियर्स, ITBP के फॉर्मेशंस, कोस्ट गार्ड ने सारे अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स करीब 10 है उनके, सब जगह प्रोग्राम किए। तो इस तरह से पिछले 3-4 साल से पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन है कि ये बहुत एक अच्छा कार्य हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि दिल से सेवा कर रहे हैं, लोगों को बेनिफिट हो रहा है, और कोई कमर्शियल एंगल नहीं, क्योंकि कहीं भी इतने सारे प्रोग्राम्स किए, अगर उसको आप डिस्टेंस में कन्वर्ट करो तो लैक्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल किया हमारे जो सिक्योरिटी विंग के फैकल्टीज ने, लेकिन कहीं भी एक रुपया भी चार्ज नहीं किया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऊपर तक जाती है, और हमको एप्रिसिएशन होम मिनिस्ट्री से भी एप्रिसिएशन मिली है, और इस प्रोग्राम के लिए भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमारे जो रक्षा राज्य मंत्री है, जो आज लिटरली ऑफिशिएटिंग डिफेंस मिनिस्टर है, क्योंकि जेटली साहब तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बिजी हैं, वो इस प्रोग्राम के उद्घाटन के लिए आने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में उनका कुछ कमिटमेंट हो गया, नहीं तो इस प्रोग्राम के उद्घाटन के लिए वो आ रहे थे। तो पैरामिलिट्री फोर्सेज पिछले 4-5 साल से बहुत अच्छी उनकी सेवा हो रही है, और मुझे खुशी है कि अभी कुछ समय से वापस आर्म्ड फोर्सेज के प्रति हमारा ध्यान गया है। कोस्ट गार्ड के लिए हमने सारे किए हैं, और इंडियन नेवी ने पिछले 6 महीने में नेवल हेडक्वार्टर में प्रोग्राम किया, और तीनों कमांड्स में किया है, और एयरफोर्स में भी हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए हैं। और इस तरह से इस प्रोग्राम में भी हमारे पास ऑफिशियली नॉमिनेशन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, आर्म्ड फोर्सेस के सारे कॉम्पोनेंट है, सबके नॉमिनेशन है। तो इस तरह से जो कार्य बहुत छोटे रूप से स्टार्ट हुआ था, आज बहुत विशाल रूप ले लिया है। इसी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो है, 10 मिनट की है, जो इसी जर्नी को डिपेक्ट करती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखें, और देखें कि किस तरह से हमारे भारतीय फोर्सेस के लिए सिक्योरिटी सर्विस विंग के द्वारा बहुत ही एक अच्छा कार्य हो रहा है। और पुनः आप सबका इस 4 दिन के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। ओम शांति।
सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का निर्माण सन 2001 में राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा भारत की मिलिट्री, पैरा मिलिट्री एवं स्टेट पुलिस फोर्सेज के लिए किया गया, ताकि बढ़ते हुए स्ट्रेस लेवल्स और सुसाइड्स को कम किया जा सके और भारतवर्ष के सैनिकों की आंतरिक शक्ति को बढ़ाया जा सके। जब आंतरिक शक्ति का विकास होता है तो स्ट्रेस और सुसाइड्स आदि नेगेटिव प्रवृत्तियों को स्वतः ही कंट्रोल किया जा सकता है। सिक्योरिटी सर्विस विंग का निर्माण होते ही पहला कार्यक्रम माउंट आबू में आयोजित किया गया, जिसमें BSF के IG श्री बख्शीश सिंह अपने हेलीकॉप्टर द्वारा पधारे। डॉक्टर श्रीनाथ मिश्रा DG CRPF ने सिक्योरिटी सर्विस विंग का ऑफिशियल उद्घाटन सन 2002 में किया, और इसमें श्री एम एल कुमावत ADG आंध्र प्रदेश के साथ आर्मी व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। अगले 10 वर्षों में यानी सन 2011 तक अनेक अधिकारियों ने हमारे सुरक्षा प्रभाग के कार्यक्रमों का विभिन्न स्थानों पर आयोजन कराया, जिससे अनेक सीनियर ऑफिसर्स और सब ऑफिसर्स को इन कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हुआ। सिक्योरिटी सर्विस विंग के इन कार्यक्रमों में लाभान्वित होने वालों में सर्वप्रथम नाम आता है स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। जनरल वी के सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एडमिरल सुरेश मेहता चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, मिस्टर अश्विनी कुमार डायरेक्टर CBI ने भी हमारे कार्यक्रमों का लाभ उठाया। सिविलियन आगाज का परिवर्तन देखकर IG नॉर्थ मेजर जनरल KS सेठी ने हमें असम राइफल्स का सरकारी बंगला दिया, जिसको उन्होंने मेडिटेशन कम एडिक्शन सेंटर का नाम दिया, और उसके द्वारा अनेकानेक एडिक्ट्स को लाभ हुआ और उन्हें नया जीवन प्रदान हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल KS जम्वाल GO3C ईस्टर्न कमांड और लेफ्टिनेंट जनरल ML नायडू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने डी एडिक्शन कार्यक्रमों के साथ साथ तनाव मुक्ति कार्यक्रम के द्वारा हाई BP पेशेंट्स की फास्टर हीलिंग की लिखित रूप से प्रशंसा की एवं भारतीय सेना के कैटे एस्टेब्लिशमेंट्स को लिखा कि तनाव मुक्ति कार्यक्रमों में JCO स्तर के अधिकारियों को भी बीके एकेडमी माउंट आबू में होने वाले कार्यक्रमों में ऑफिशियली नॉमिनेट किया जाए। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ट्रेनिंग के ऑफिस से यह आदेश भी पारित किया गया कि एसएसडब्ल्यू फैकल्टीज को भारतीय सेना के सभी फील्ड फॉर्मेशन में तनाव मुक्ति कार्यक्रमों के आयोजनार्थ भेजा जाए, जिससे तनाव का स्तर कम किया जा सके और भारतीय सैन्य बल व अर्ध सैन्य बलों के अधिकारी और जवान एक सुखमय जीवन जीने की कला सीख सकें। मार्च 2012 में लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण GOC&C साउथ वेस्टर्न कमांड ने जयपुर में एक मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारतवर्ष के चारों कोनों में, उत्तर में सियाचिन, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में मणिपुर राइफल्स और पश्चिम में मरीन बटालियन BSF कोटेश्वर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतवर्ष के अधिक से अधिक मिलिट्री और पैरामिलिट्री फॉर्मेशंस को कवर करने का प्रयास किया गया। क्योंकि एक वर्ष में ये कार्यक्रम पूरे नहीं किए जा सकते थे, इसलिए इस प्रोजेक्ट को सन 2013 तक बढ़ा दिया गया। जून 2014 में सिक्योरिटी सर्विसेज विंग को एम्पैनल किया गया श्री डी के पाठक डीजी BSF द्वारा, क्योंकि उन्होंने कई स्थानों पर हमारे कार्यक्रमों को देखा और सराहा था। मिड जुलाई 2014 को पहला BSF कार्यक्रम कोरापुट उड़ीसा के लिए किया गया, जो इंसर्जेंसी के लिए जाना जाता है। स्वयं IG श्री अशोक कुमार ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। BSF के सभी फ्रंटियर लेवल के कार्यक्रम 6 मास में पूरे होते देखकर जो फीडबैक प्राप्त हुए, उनका अध्ययन कर हमें कहा गया कि हम फ्रंटियर्स के बाद हर सेक्टर में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स करें। BSF को देख CISF को भी प्रेरणा आई कि वह भी हम अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स कराएं। पहला कार्यक्रम फरवरी 2015 में CISF अकेडमी NISA हैदराबाद में तथा दूसरा कार्यक्रम राजस्थान के बहरोड ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया। IG CISF ने बहुत सुंदर फीडबैक DG CISF को दिया और DG साहब ने प्रेरित होकर हमें आह्वान किया कि ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ साथ ऑपरेशनल यूनिट्स में भी कार्यक्रम आयोजित करें, क्योंकि मुख्य तनाव तो वहीं होता है। 2015 का मुख्य आकर्षण रहा हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्टेट पुलिस, BSF, CISF, ITBP, SSB, AR जैसे 16 संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया। यह SSW के लिए एक नया कीर्तिमान था। इस कार्यक्रम में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स श्री किरेन रिजिजू अपने हेलीकॉप्टर से पधारे। श्री किरेन रिजिजू ने अपने उद्घाटन भाषण में CPOs के लिए सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ ट्रेनिंग के लिए बहुत स्पष्ट मैसेज दिया।
समझना हो, इसलिए मैं जब यहाँ आया हूँ तो मुझे भी स्पिरिचुअली कुछ विचार आता है, लेकिन हमारे जो माताओं के सामने में जो स्पिरिचुअल यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, उनके सामने में मेरा अपने स्पिरिचुअल आइडिया कहना आवश्यकता नहीं है, वो तो सूरज के सामने में दिया जलाने वाली बात होगा। इसलिए मैं अपना मेरा स्पिरिचुअल आइडिया को मैं अपने ही मन में रखता हूँ, लेकिन मैं इतना तो आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि अपना जो सेंट्रल फोर्सेस है अपने गृह मंत्रालय के माध्यम से, मैं तुरंत जाकर के अपने डिवीजन में सबको कहूंगा कि जैसे अभी हमारा BSF CISF कुछ शुरू किए हैं, बाकी ऑफिसर सब यहाँ आए हुए हैं, सारा फोर्सेस में इसका एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए जो लगातार इस तरह का जो ट्रेनिंग है, इंटरेक्शन है, ये हमारे जितना भी सिक्योरिटी फोर्सेस में है, इसका एक प्रैक्टिस एक रेगुलर वे में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीका अपनाना चाहिए। इसके लिए मैं जाकर के तुरंत अपने अधिकारियों से मैं बात करूंगा।
सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग मैकेनिज्म को डेवलप करने अर्थ गृह मंत्रालय द्वारा सभी CPOs को जून 2015 में पत्र लिखा गया। इस पत्र के प्रसारित होते ही इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल्स ने सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के प्रशिक्षकों को प्रेरित किया हिमाच्छादित दूरस्थ सीमांत इलाकों में भी तनाव मुक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कुछ अनुभवी अधिकारियों ने संकल्प लिया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की प्रेरणा के अनुसार सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म फॉर स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा अर्धसैनिक बलों के जवानों के मन बुद्धि को सशक्त बनाकर हम तनाव का उन्मूलन करते ही रहें।
इतिहास देखा एसएसडब्ल्यू का, सेवाएं देखी एसएसडब्ल्यू की कि किस प्रकार से नियमित रूप में और निस्वार्थ रूप में ये सेवाएं फौज में कार्यरत अधिकारी भी दे रहे हैं और एसएसडब्ल्यू की फैकल्टी भी दे रही है जिसमें शामिल हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें हैं। एक बार पुनः सभी के लिए जोरदार तालियां। मैं आप आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रखर त्रिवेदी जी को जो कमांडेंट हैं बीएसएफ के और रायगंज से हमारे बीच में आए हैं। आप एक वरिष्ठ बीएसएफ के अधिकारी हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी सेवाएं बीएसएफ को और भारत को दे रहे हैं, इस देश को दे रहे हैं और आपने भारतवर्ष में जम्मू से लेकर नॉर्थ ईस्ट में अपनी सेवाएं दी हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि आज गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में वे हमें अपनी शुभकामनाएं देंगे। रेस्पेक्टेड श्री प्रखर त्रिवेदी जी, कमांडेंट बीएसएफ रायगंज।
ओम शांति। यहां उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजन बहनों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं पहले तो, क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूं। मैं भी जो है इस प्रोग्राम के लिए, जो कि हमारा प्रोग्राम कल से होने वाला है, उसके लिए मैं भी नॉमिनेट होकर यहां पर आया हूं। ये जो ज्ञान सरोवर एकेडमी है, ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार, यहां पर जो आप लोगों का जो ये कार्यक्रम है जिसके तहत ये जो कोर्स 28 अप्रैल जो कि आज से 2 मई तक होना है, जिसमें कि विभिन्न बलों से जो है मेरे जो बहादुर साथी यहां आ रखे हैं, उनके एक सेल्फ एम्पावरमेंट मैनेजमेंट के तहत उनको अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए एक प्रयास होगा। ये एक अंदर से जो हमारी शक्ति है इसको हमको आगे लाना है। ये हमारे लिए, हमारे बल के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा हमारे दैनिक क्रियाकलापों के लिए तथा आने वाले समय के लिए। जैसा कि सभी जानते हैं और एक कहावत भी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका जो अर्थ है, आपका अगर मन स्वस्थ है, मन में शुद्ध विचार हैं, अच्छे विचार हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो गंगा जैसी पवित्र चीज भी जो है आपके साथ हमेशा है। जिसे कहा जाता है कि हम हरिद्वार जाते हैं, अपने पापों को धोते हैं, लेकिन अगर आपके शुद्ध विचार मन में हैं तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो मन की शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। जैसा एक कहा भी गया है, हमको ऐसी शक्ति देना कि मन विजय करें। इसका अर्थ यह है कि मतलब हमारी जो मन की शक्ति है, अगर हमने उस पर विजय पा लिए तो सब कुछ हमारा है। ये जो आत्मा से परमात्मा का जो मिलन जिसे हम कहते हैं, जिसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं, जो मनुष्य का ये योनि जो मिली है हमको, एक उसके लिए एक प्रयास है। मन को शांत करना, स्थिर रखना सबसे जरूरी है किसी भी चीज के लिए। जो हम छोटे से छोटा फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, अगर हम उसको शांत मन से करेंगे, या कोई बड़े से बड़ा फैसला भी होगा अगर हम शांत मन से करेंगे, तो वो हमेशा हमें अच्छाई की तरफ ले जाएगा, हमें नुकसान नहीं होने देगा। जैसा कि फोर्सेस में सबसे छोटी इकाई होती है एक सेक्शन की, सेक्शन का जो कमांडर है, आपका एनसीओ लेवल का हेड कांस्टेबल, आज की तारीख में एएसआई, एक जो छोटा सा सेक्शन है ग्राउंड पे, वही सबसे ज्यादा कामयाबी दिला सकता है। और वो सेक्शन के कमांडर आप हैं, जो यहां पर इस प्रोग्राम में आए हैं विभिन्न बलों से। तो हमको यहां पे जो सिखलाई गई जो चीजें हैं उनको अच्छे से जो है सीखना है, उसमें पूरे मनोयोग से जो है विचार करना है। क्योंकि अगर आप स्थिर मन से रह के कोई भी कार्य करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो चाहे आपका जो जूनियर है वो भी आपसे हमेशा सलाह मांगेगा, आप उसे सही सलाह दे पाएंगे, सीनियर जो है उससे आपका समन्वय ठीक से बना रहेगा, और फोर्सेस में जो स्ट्रेस है वो बहुत हद तक जो है कम हो सकेगा। तो इस आने वाले समय के जो चुनौतियां हैं उसके लिए बहुत ही ये सहायक सिद्ध होगा। और मैं आप सभी को इस जो आने वाले इस चार दिनों का जो आपका कोर्स है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर फॉर योर वर्ड्स ऑफ ग्रीटिंग्स। आपने हमें बहुत ही सरल शब्दों में और मोटिवेट करते हुए, इंस्पायर करते हुए सुंदर शब्द कहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आगे बढ़ते हुए आज के इस कार्यक्रम में हमारे चेयरपर्सन सिक्योर सर्विस विंग से इंस्पिरेशन से लेंगे, से शुभकामनाएं लेंगे। स्कॉलर रिटायर्ड अशोक गाबा, और संक्षेप में आपका परिचय इस प्रकार से है कि आपने बीटेक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी। 1968 में आप इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हुए थे। 1971 में आप इस राजयोग मेडिटेशन से जुड़े। आप इंडियन एयरफोर्स के एक बहुत ही अपकमिंग ऑफिसर रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड आपका रहा है। जो भी आपने कोर्स किए उसमें आप उत्तीर्ण रहे, अव्वल रहे हैं, और आपके नाम से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आपने अपनी जावा मोटरसाइकिल में खारदुंगला तक चढ़कर दिखाया था लॉन्ग बैक, जब आप सिर्फ 30 इयर्स के थे। एक बार जोरदार तालियां। तो एडवेंचर की तरफ भी आपका बहुत रुझान है, और जब से आप इस संस्था से जुड़े तो इसके कई सारे कैंपेन्स में आप जुड़े, और स्क्वाड्रन लीडर के पद पर जब आप कार्यरत थे माउंट आबू में, 1986 में, तो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके आपने संस्था में समर्पित रूप में अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी। और उसके बाद जब ये हमारा प्रांगण बना ज्ञान सरोवर का 1995 में, तब आप यहां के मैनेजर बने। और 2001 में जब हमारी विंग बनी SSW की, तब आप इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। और 2015 से आप इसके चेयरपर्सन हैं। आप सब देख रहे हैं कि जब हमारे चेयरपर्सन को आप चलते हुए देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कुछ थोड़ी सी तकलीफ इनको हो रही है। तो इसका छोटा सा इतिहास बताना चाहूंगा कि आज जो विंग आप देख रहे हो, जो सेवाएं आपने देखी, जो आपने इस फिल्म को देखा, अगर ये आज इस रूप में है, इसका ये प्रारूप है, तो उसका श्रेय अगर जाता है तो पूरा का पूरा हमारे भाई साहब को जाता है, जिन्होंने अथक मेहनत के साथ इसको इस रूप में इस मंजिल तक पहुंचाया, सबके सहयोग से, सबकी शुभकामनाओं से। तो 2016 मई में आप मुझसे मिलने दिल्ली आए थे, तब मैं दिल्ली में पोस्टेड था, और वहां से आप मदुराई सेवा के लिए जा रहे थे। ट्रेन में सफर करते हुए आपको रात को पैरालिटिक स्ट्रोक एक हुआ, और उसके बाद आपका पूरा राइट पोर्शन एकदम पैरालाइज हो गया, और उसके बाद दूसरा स्ट्रोक आया जिसमें आपकी स्पीच भी रुक गई। बट चूंकि सबकी दवाएं थी, इतनी सेवाएं थी, परमात्मा का ब्लेसिंग्स था, आपका अंदर का आत्मबल बहुत मजबूत था, आपने उसे रिकवर किया, और आज आप हमारे बीच में बैठे हैं, हमें आशीर्वाद भी दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, और हम इसको आज इंस्पिरेशंस भी देंगे। सो आई वेलकम स्कॉर्डिनेटर अशोक गावा जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार पुनः जोरदार ताली।
मैं इस ज्ञान सरोवर के पुष्पित पल्लवित मनभावन प्रांगण में आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि सिक्योरिटी सर्विसेज के अलग अलग विभाग इस पुनीत कार्यक्रम में आप पधारे हैं। जब से सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का निर्माण हुआ 1971 से, तब से हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि चाहे हिमालय के ऐसे शिखरों पर जा के हम लोगों ने सेवाएं की हैं। और मैं कर्नल सती का कमांडरशिप का धन्यवाद करना चाहता हूं कि धीरे धीरे सिक्योरिटी सर्विसिंग में एक इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि कभी तो हम मैं कहूंगा कि एक छोटी सी इकाई से हम लोगों ने सिक्योरिटी सर्विसिंग में जाना शुरू किया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सिक्योरिटी सर्विसेज विंग में कि हम आ सकते हैं और इस प्रकार का ट्रेनिंग आयोजन कर सकते हैं। मैं इसी के साथ खास तौर पर शुक्ला दीदी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में आसीन है और हम सब की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं कमोडोर यशवंत जी को बहुत पुराने समय से जानता हूं, जबकि वो नेवी में ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में थे और उनको ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में आते ही इनको कमोडोर का पद प्राप्त हुआ और इनकी सेवाएं चारों तरफ मशहूर हैं। आज दिल्ली से आए हैं और हमारे डीएसएफ से हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर बहुत उमंग उल्लास में आए हैं। और मैं कमांडर बनोट का भी धन्यवाद करता हूं कि आप सभी के हमारे बीच में आए हैं और ऑफिस का मैनेजमेंट देख रहे हैं, और छोटे छोटे हमारे दीपक भाई जिन्होंने इन कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सबका मैं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही मैं पुनः सिक्योरिटी सर्विसिंग विंग का धन्यवाद करते हुए मैं स्थान ग्रहण करता हूं। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद रेस्पेक्टेड स्क्वाड्रन रिटायर्ड अशोक गाबा जी, चेयरपर्सन SSW। अब हम अपनी भारतीय संस्कृति की रीति रिवाज के अनुसार किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम हमेशा द्वीप प्रज्वलन से करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे मंच के कोऑर्डिनेटर से कि वे द्वीप प्रज्वलन की तैयारी करें, और हमारे बीच मंच में आसीन सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हमारे साथ द्वीप प्रज्वलन में जुड़े। साथ ही साथ हमारे बीच बैठे हैं रेस्पेक्टेड ADG BSF रिटायर्ड श्री हजेला जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा सर आप भी आइएगा मंच पे। और हमारे नेवी से एक सेलर, सीनियर सेलर भी आएंगे, और एक पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी आप जरूर आएंगे, हमें बहुत खुशी होगी। इस प्रकार से हम आज के इस कार्यक्रम की द्वीप प्रज्वलन द्वारा एक विधिवत शुरुआत करेंगे और परमात्मा से फिर पुनः शुभकामनाएं लेंगे कि कार्यक्रम सफल रहे और इसमें हमारा जीवन भी अब सफल रहे। मैं रिक्वेस्ट, आइए दीदी, थोड़ी देर के लिए पंखों को बंद कर देंगे। एक नेवी से भी हमारे सीनियर सेल आ जाइए प्लीज कम, और एक हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी हमारे रिप्रेजेंटेशन प्लीज आइए, ताकि हमारे आर्म फोर्सेस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी रिप्रेजेंट होंगे। थोड़ा सा रास्ता देंगे,
अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
अब मैं स्वागत करूंगा कमोडोर यशवंत कुमावत सर का, जो हमारे बीच में भारतीय नौसेना नई दिल्ली से आए हैं, जहां पे आप नेवल हेडक्वार्टर्स में कार्यरत हैं। आप हमारे पिछले प्रोग्राम्स में 2008-09 में आए थे, उसके बाद से आपको ये मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा। फिर आप जब सीओ चिल्का, जो नेवी की एक बहुत मशहूर एकेडमी है, वहां पे कार्यरत थे, सीओ थे, तो आपने विधिवत रूप से ऑफिशियली इस मेडिटेशन कोर्स को वहां पे आप लेके आए और बहुत सारे बैचेस को ये कोर्सेज करने का प्रावधान मिला, मौका मिला, एडवांटेज मिला। और अब आप कमोडोर के रूप में, जो भारतीय मैन पावर पीडी, आप अभी वर्तमान में प्रिंसिपल डायरेक्टर मैन पावर प्लानिंग है हमारे नेवल हेडक्वार्टर्स में, और समय समय पे हमको आप दिशा निर्देश देते रहते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ यशवंत कुमार जी का स्वागत करते हुए कि वे भी हमें आज अपनी शुभकामनाएं इस प्रोग्राम के लिए दें। थैंक यू सर।
ओम शांति। जैसा कि सती भाई ने भी बताया, मैं भी आप ही की तरह यहां एक प्रोग्राम अटेंड करने आया था और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जो यहां बैठे हैं, जो प्रोग्राम अटेंड करने वाले हैं, इनको आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको इस प्रोग्राम के एंड तक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है, ये मेरा मानना है। ये शायद हो सकता है आप में से, मेरे इस विश्वास पर आप में से कुछ लोगों को अभी शंका हो, लेकिन जब प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा तो ये जो मैं बात बोल रहा हूं वो आप सब बोलेंगे, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। मेरी सिर्फ आपसे छोटी सी एक विनती है, मैं आपको कोई जान नहीं बांट सकता क्योंकि मैं उन लोगों में नहीं हूं, जैसा मैंने बोला कि मैं आप ही की तरह हूं। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इस अनुभूति को पाने के लिए, इस फायदे को उठाने के लिए, इस पूरे प्रोग्राम का असली फायदा उठाने के लिए मैंने क्या किया वो मैं आपको बताता हूं। आप ऐसा करें या न करें ये आपकी मर्जी है। जब हम यहां आते हैं तो हमारे बहुत सारे पुराने विचार रहते हैं, हमारी धारणाएं रहती है, हमारे खुद के अपने बिलीफ सिस्टम्स रहते हैं, हमारे अनुभव रहते हैं, बहुत सारा हमारे साथ में पुराना बैगेज रहता है साथ में। अगर हमें कोई नई अनुभूति करनी है और अगर हमें कोई नई चीज सीखनी है तो बहुत जरूरी है कि हम उन अनुभूतियों को, उन धारणाओं को, उन विश्वासों को थोड़ी देर के लिए उनको और नए विचार आने के लिए खोल दें। हम अपने मस्तिष्क का दरवाजा बंद न करें कि नहीं, मैं तो ऐसा मानता हूं और मेरा मानना बिल्कुल सही है और इसके अलावा जो कुछ कोई बोलता है वो ठीक नहीं है। थोड़ी देर के लिए, ये चार दिन के लिए, अपना जिसे कहते हैं कि खुले मन से आप जो कुछ बोला जा रहा है उसको सुनिए, समझिए और फिर जो आपकी मर्जी पड़े वो कीजिए। अगर आपको कहीं कॉन्फ्लिक्ट लगती है कि जो मेरी धारणा है, जो मेरी मान्यता है, जो मेरे विचार हैं, जो मेरे पुराने अनुभव हैं, उनके हिसाब से कुछ चीज आपको फिट नहीं बैठ रही है, वो एक चीज बोलता है और आपको यहां जो कुछ बोला जा रहा है वो शायद दूसरी चीज बोल रही है, तो आपको कौन सी चीज को मानना चाहिए? मेरे ख्याल से आपको उस चीज को मानना चाहिए जिससे सारी दुनिया का भला हो, जिससे समाज का भला हो। अगर एक आदमी बोलता है भगवान नहीं है और दूसरा आदमी बोलता है भगवान है और दोनों के पास सबूत नहीं है, न इसके पास सबूत है कि भगवान है, न उसके पास सबूत है कि भगवान नहीं है, तो हमें कौन सी बात को मानना चाहिए? अगर हम मानते हैं कि भगवान नहीं है, उसका परिणाम क्या होगा समाज में? और अगर हम मानते हैं कि भगवान है तो उसका परिणाम क्या होगा समाज में? ये बात सोच के, क्योंकि प्रूफ तो दोनों के पास नहीं, दोनों इक्वली अपने बड़े पूर्ण विश्वास के साथ बोल रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जब दोनों के पास प्रूफ नहीं है तो उस बात को मानिए जिसके मानने से समाज का भला हो, उस बात को छोड़ दीजिए जिसके मानने से, उस बात को छोड़ दीजिए जिसके मानने से समाज का भला नहीं होने वाला है, बुरा होने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें सबको चाहिए हमारा समाज बहुत अच्छे से आगे बढ़े, हमारे फ्यूचर जनरेशन शांतिपूर्वक रहे, तो तो इस खुले विचार से आप चलिए, वो बात मानिए जिससे समाज का भला होता हो, वो बात छोड़ दीजिए जिससे समाज का भला नहीं होता हो, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे मेरी प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे दिमाग में जो लॉजिक जो रीजनिंग जो चलती है, ये कभी कभी सीखने में बहुत, ये सीखने में बहुत मदद करती है, पर कभी कभी यही चीज हमारी सीखने में ये एक रोड़े का पत्थर बन के सामने आ जाती है। मेरा खुद का भी बहुत रैशनल दिमाग है, तो वो रैशनलिटी कभी कभी बीच में आ जाती है सही चीज को सीखने में। उसके लिए जो मैंने जो माना, वो मैंने ये माना कि आप कुछ चीज बोल रहे हैं, या तो आप सबूत कर दीजिए, जैसे साइंस सबूत देती है कि भाई ये ऐसा करो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बिल्कुल प्रॉपर रीजनिंग के साथ आप डिडक्शन पे लेके आ जाइए कि इसलिए ये ऐसा ही है, सबूत कर दीजिए, साबित कर दीजिए, एक्सपेरिमेंट से साबित कर दीजिए, थ्योरी बनाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और साबित कर दीजिए कि ऐसा है। लेकिन अगर मैं किसी भी कारणवश साबित नहीं कर सकता, तो फिर आप मुझे जो बता रहे हैं उस चीज का अनुभव करा दीजिए। हाथ कंगन को आरती क्या, जो चीज मैं मेरे सामने अगर कोई बोल रहा है कि यहां ये माइक पड़ा है और इसमें अगर बोलेंगे इसकी आवाज जोर से आएगी, तो उसको मेरे को इस माइक कैसे बनता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी साउंड इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट होता है, फिर वो कैसे एम्पलीफायर बनता है, फिर वो सब समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां बैठे हैं और मेरी आवाज जो मैं धीरे से बोल रहा हूं सबसे पीछे तक के आदमी को सुनाई दे रही है, फिर इसके लिए कोई रीजनिंग कोई सबूत नहीं चाहिए, ये तो हो रहा है, ये आपने महसूस किया है कि ये हो रहा है। तो इन दोनों में से मेरा मानना है कि आप एक काम मेरे को बता दीजिए, या तो आप लॉजिकली डिड्यूस करके बता दीजिए कि ये है सच है, अगर नहीं बता सकते हैं कई कुछ किसी भी कारण से, तो आप मुझे वो सच का अनुभव करा दीजिए। एक बार मैंने अनुभव कर लिया, उसके बाद किसी सबूत किसी प्रूफ किसी तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है। आप अगर मेरी पहली बात मान के चलेंगे, ऐसा आप अपने विचार रखते हैं अगले पांच दिन के लिए, तो मुझे यहां पहली बार, ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार मेडिटेशन क्लास अटेंड की हो या पहली बार किसी थ्योरी को पढ़ा, मैंने लगभग सभी धर्म, एटलीस्ट जो भारत में जितने धर्म प्रचलित हैं, सभी धर्म की पुस्तकें पढ़ी हुई है, खास खास पुस्तकें सब पढ़ी हुई है। लेकिन जो पहली बार मुझे अनुभव जो हुआ, प्रैक्टिस भी की है, मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस की है, कई लोगों ने बहुत सारे तरह तरह के, आपको मालूम है आजकल कुछ सही हैं, कुछ लोगों ने दुकानें भी चला रखी है योग सिखाने की, तरह तरह के योग सिखाने की। तो पहली बार मुझे जब मैंने यहां पर एक क्लास में सुबह जब योग किया बिना पूर्व प्रशिक्षण या प्रैक्टिस के, तो मुझे स्वयं को ऐसा लगा कि कुछ अनुभव अलग है, कुछ अनुभव खास है, कुछ अनुभव है जो ये बोल रहे हैं वैसा ही है। तो फिर मैंने कभी सवाल नहीं पूछा कि ये है नहीं है क्या है, क्योंकि वो तो खुद महसूस मैंने कर लिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मेरी पहली बात को मान के चले, दिमाग को खुला रखें, तो आप में से ज्यादातर को ये अनुभव होगा और बिना किसी मेहनत के होगा। कोई यहां के वातावरण में ही कुछ है कि आपको बिना किसी, कोई चमत्कार नहीं होगा, प्लीज मेरे कहने का गलत मतलब नहीं निकालिए, ऐसा कोई जादू मंत्र से यहां पटाखे नहीं फूटने वाले हैं, कुछ अजीब सी हरकतें नहीं होगी यहां पर अंदर से आपको जो भी एहसास होगा, जो भी महसूस होगा, जो भी आप फील करेंगे, वो कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि हाँ ये सच है और यही सच है। सो इन दो प्रार्थनाओं के साथ मैं फिर भी ये नहीं कहता कि आप मेरी बात मानिए, मैं कोई नहीं हूं जो आपको ज्ञान दे सकूं, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि मैंने क्या किया जिससे मुझे क्या फायदा हुआ। अगर आप चाहें तो ये अपना सकते हैं, और मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपको 100% इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तीसरी और आखिरी चीज, जिसको ये फायदा नहीं लेना है, जिसको ये बात नहीं माननी है, जिसको अपनी पूर्व धारणाओं पर ही टिके रहना है, तो भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है। एक बात जरूर ऑब्जर्व करिएगा, हम सर्विसेज हैं सारे जो हैं, हमको सर्विसेज बोलते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज विंग, इसका नाम ही सर्विसेज विंग है। सर्विस का मतलब क्या होता है ये 5 दिन के प्रोग्राम में आप यहां देख के जाइएगा, और अगर आपको लगता है कि ये सर्विस का मतलब है और मैं सर्विस में हूं तो मुझे अपनी अपनी यूनिट में जाके किस तरह से अपना काम करना है ये आप निश्चित करके जाइएगा। इसी के साथ मैं सभी का और बहुत बहुत आभारी हूं, मैं अशोक गाबा सर का, दीदी का, जिन्होंने मुझे यहां आने के पर इजाजत दी, और इजाजत के साथ साथ मैं आशीर्वाद दिया, क्योंकि जैसे आपको पहले बताया था बिना आशीर्वाद के कोई कहीं नहीं जा सकता। हमारे भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज चल रही है। आज सुबह मैं 10:30 बजे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाला था, की मैंने कपड़े वगैरह सब लेके गया अपने साथ, मैंने सोचा था 10:30 शुरू हो जाएगी, मैं सबसे पहले अपना वाला प्रेजेंटेशन दूंगा, और 10 मिनट का मेरे को बोला गया था, मैंने 5 ही मिनट का प्रेजेंटेशन बनाया, और उसके बाद मैं जो है 5 मिनट डिस्कशन करके और वहां से भागते सीधा एयरपोर्ट चला जाऊंगा। हुआ ये कि हमारा जो सिस्टम था जो बाकी कमांड से लिंक थी, क्योंकि और जगह से भी बॉम्बे कोचिन सब जगह से लोग जुड़ने थे, वो शुरू ही नहीं हुआ, और उसके बाद वो कुछ और प्रॉब्लम। तो मैंने कहा, मेरे जो असिस्टेंट, उन्होंने कहा सर 11 बजे अगर आप यहां से नहीं निकले तो आपकी फ्लाइट मिस है, आप फिर भूल जाइए कि आप जा पाएंगे। तो कहते रास्ते में भी बहुत भीड़ रहेगी, तो 11 बजने पे हमारा जो है वो प्रोग्राम जो होना था, कॉन्फ्रेंस जो होना था, वो शुरू हुई। अब मुझे डर लगना चाहिए, क्योंकि वो तो 11 बजे तो मुझे वहां से निकल जाना चाहिए था, और 10:30 मैंने सोचा था 10:40 निकल के कपड़े भी बदलने हैं जाके, और फिर सामान लेके भागना एयरपोर्ट की तरफ, तो मुझे डर लगना चाहिए था, स्वाभाविक है, लेकिन मुझे डर नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं आज इस प्रोग्राम के लिए नहीं पहुंच पाऊंगा। 11 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, 11:15 प्रोग्राम वहां उन्होंने मेरा पार्ट खत्म किया, मैं बाकी चलते रहे, मैंने कहा मैं जा रहा हूं, और मेरा जो प्लान था कि 12:05 पे मुझे एयरपोर्ट पे पहुंचना है, मैं 12:05 पे एयरपोर्ट पे पहुंच गया। ये कहानी बताने का पर्पज यह है कि अगर आप यहां आए हैं तो कुछ मकसद है, किसी का कुछ मकसद है, आपके जो भी ईष्ट देवता रहे होंगे, जिसकी भी आप पूजा करते होंगे, जिसको भी याद करते होंगे, वो शायद चाहते हैं कि आप यहां आए, नहीं तो आप आ नहीं सकते थे यहां पर, तो वो चाहते थे, उसका कोई मकसद होगा आपको यहां लाने का, और ये मकसद आपको प्रोग्राम के बाद और प्रोग्राम के बाद घर जाने के बाद में भी कुछ दिनों में कुछ महीनों में पता चलेगा कि इसका मकसद क्या था आपके यहां आने का। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही विस्तारपूर्वक और बहुत अच्छे ढंग से अपने अनुभव भी शेयर किए और हमें इस पूरे प्रोग्राम का जो रियल मीनिंग है कन्वे किया, क्योंकि आप खुद इस अनुभव से गुजरे हैं तो ऐसे शब्द हमें ज्यादा अपील करते हैं, और क्योंकि आप एक सर्विंग ऑफिसर हैं और वर्तमान में आप कार्यरत हैं नेवल हेडक्वार्टर्स में, तो आपकी बात हमें ज्यादा अपील करेगी, तो एक बार पुनः जोरदार तालियां आपके लिए। अब हम आगे आज इस कार्यक्रम में एक 5 मिनट का वीडियो देखेंगे जो ब्लेसिंग्स के रूप में हमें हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की हेड, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज, राजयोगिनी दादी जानकी जी देंगी। ये एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जो उन्होंने बस कुछ समय पहले हमें भेजी है, जो हम आपको देंगे, जो आप लोगों के लिए है, और विशेष संक्षेप में परिचय देना चाहूंगा हमारी दादी जानकी जी का। जब ये संस्था स्थापित हुई थी 36-37 में, तब से आप 21 ईयर्स की एज से इससे जुड़ी। उसके बाद जब हमारी विदेश यात्राएं, विदेश में सेवा शुरू हुई, तो उसके जो पिलर थी, उसकी जो हेड थी, वो आप ही थी, और आज 140 देशों में हमारे ब्रांचेस हैं, उसका सारा श्रेय हमारी दादी जानकी को जाता है। और 2007 अगस्त से आप इस संस्था की हेड हैं, और इस साल जनवरी में, 1 जनवरी को हमने उनका 101 बर्थडे मनाया, 101, और अभी भी आप बहुत अच्छे ढंग से बोलती हैं, बहुत जोश है, और जैसे फौजी को क्या पसंद आता है, जोश, तो वो बुलंद, वो जोश उनकी पर्सनैलिटी में है, तो वो आज हमें संबोधित करेंगी इस वीडियो क्लिप से। दादी जानकी जी।
ओम शांति। अभी मैं सिक्योरिटी विंग में हमारे जो अच्छे गेस्ट है ना उनको वेलकम करने के लिए सामने बैठी हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये विंग की सेवा वंडरफुल सेवा है। सीनियर ऑफिसर विवाह है तो आर्म फोर्स में फोर्स विवाह है क्योंकि हर एक अपनी अपनी सेवा शक्ति सेवा की शक्ति इस सेवा करने में बहुत जैसे कि दुआएं ले रहे हैं और सबकी सेफ्टी के लिए ये जो सिक्योरिटी वाले हैं बहुत अच्छी सेवा करते हैं। इसके लिए अपने माइंड को ऐसा फ्रेंड बना दो जो माइंड ऐसे समय पर न घबराहट में ना आए और घबराए नहीं तो क्या होगा। नहीं, हमको अंदर ही अंदर पावर ऐसी रखनी है जो परमात्मा बाप का साथ जो है ना बहुत सेफ है। साफ जी को साफ भी रखता है सेफ भी है भय नहीं है निर्भय निर्वैर जब वैर भाव नहीं है मित्रता भाव है ना तो सेफ्टी है सिक्योरिटी है हमारे तो। मैं कोई ड्रेस पहन के घूमती नहीं हूँ पर तो इतना 80 साल इजी कैसे भगवान ने सेफ्टी रखी है क्योंकि सच्ची दिल पर साहेब राजी हिम्मत बच्चे मदद बाप नियत साफ तो जो भी संकल्प करते हैं पंडर है परमात्मा की मदद से साकार हो जाता है। ऐसे दिल बड़ी है सच्ची है सच्ची दिल बड़ी दिल फराक दिल दिल पर हाथ रखे देखो कैसे हमारी दिल औरों के कोई भी आत्माएं हैं। हम ये नहीं कहते मैं इसमें क्यों नहीं क्यों क्या नहीं करो सच्ची दिल से फेमस है व्यवहार ऐसे रहो तो रात दिन कोई भी टाइम हो तो ये हार्मनी मना हार मानी झगड़ा टूटा ऐसे है। इंग्लिश अखर मुझे याद है मोरिसन में मैं थी गवर्नर साहब था वो सुन करके हार्मनी का अर्थ मुस्कुराने लगा क्योंकि मनुष्य आत्मा जिद करते सिद्ध करने के लिए हम राइट है ये हमारा ये नहीं ये नहीं करना है सिद्ध करना उसका जिद करना ये शोभा नहीं है। सत्यता निम्रता से गंभीरता से पॉजिटिव जितना भी हो सके यही कोई भी प्रॉब्लम है ना प्रॉब्लम में घबराना नहीं है मुझना नहीं है ऐसे अडोल चल रहना अचल अडोल स्थिति में भगवान भी खुश मैं भी खुश दुनिया भी खुश इसमें अंदर से जितना अभी जो भी परमात्मा के बच्चे जिसलिए जहाँ भी हाजिर होते हैं मैं देखती हूँ उनमें वो पावर आ जाती है क्योंकि ये कोई स्थूल पावर नहीं चाहिए हथियार चाहिए ये चाहिए नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए परंतु सच्चाई और प्रेम से खुशी से सेवा में सहयोग देना सबसे अच्छा ये एक श्रेष्ठ कर्म है। क्योंकि मेरे पास राज जो कितना वंडरफुल है उसमें कहीं जो भी कोई भी प्रॉब्लम सामने है ना वो चली जाती है मैं अडोड़ते होकर रहती। थैंक यू ओके ओम शांति वेलकम सिक्योरिटी इनको मैं कहती हूँ जो भी बाबा शिष्य सेवा के लिए वहाँ हाजिर है उसको निमित्त बन करके ऐसे सत्यता निमित्ता से सेवा के दाई सफलता साथ दे रही है देती रहेगी। थैंक यू।
तो वर्तमान में हमारी जो चीफ हैं, वो हमारा जो परिसर है नीचे आबू रोड के नजदीक, उसको हम बोलते हैं शांति वन, वहां पे आप स्थित हैं और वहीं से आज हमने ये वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाई है। और इन्हें मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का भी किताब हासिल है, क्योंकि इनकी जो मेडिटेशन की स्टेज है वो बहुत ऊंची क्वालिटी की है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा स्टेज। और तो एक बार हम पुनः जोरदार तालियों से दादी जी का धन्यवाद दें। अब मैं हमको आज के इस कार्यक्रम के लिए आशीर्वचन देने, ब्लेसिंग्स देने, गुड विशेष देने राजयोगिनी बी के शुक्ला दीदी को आमंत्रित करूंगा। संक्षेप में आपका परिचय इस प्रकार से है कि आप 1952 से इस संस्था से अपने बाल्यकाल से जुड़ी हैं और उसके बाद आप सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की सेवाओं से इनडायरेक्ट रूप से भी जुड़ी, जब आपने तिहाड़ जेल की बहुत सुंदर सेवाएं की और किरण बेदी जो आईजी थी तिहाड़ जेल की उनके साथ आपकी व्यक्तिगत मित्रता थी और उनके साथ जो रिफॉर्म्स कार्यक्रम हुए जेल्स में हमारे कैदियों के प्रति, उसमें बहुत सुधार हुआ। और आज भी बताते हुए मुझे खुशी होती है, यहां भी कुछ जेलर्स बैठे हैं, हमारे अधिकारी बैठे हैं, कि आज भी जेल नंबर 2 तिहाड़ में प्रॉपर एक डेडिकेटेड रूम है जहां पे हमारा राजयोग मेडिटेशन और एक क्लासेस चलती रहती है आज भी। और हमारी नियमित रूप से सारिका बहन और हमारी हरिनगर की बहनें वहां जाती हैं हफ्ते में और वहां के कैदियों क्लास कराती हैं। एक बार मुझे भी जाने का मौका मिला और मुझे कहते हुए आश्चर्य होता है कि मैं भाप नहीं पाया कि ये कैदी है कि कोई यहां पे विजिटिंग गेस्ट है। उसके चेहरे की चमक उस कैदी में इतनी थी और कितनी खुशी थी, जैसे कि उसको लग ही नहीं रहा था कि मैं कैदी हूं, इतना बड़ा रिफॉर्म था। साथ ही साथ जब से ये विंग बनी आप हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप वर्तमान में दिल्ली के जो हरिनगर सब जोन है उसके डायरेक्टर हैं, जिसके नीचे मोर देन 60 सेंटर्स हैं, मोर देन 100 सिस्टर्स आपके नीचे कार्यरत हैं। तो मैं पुनः जोरदार तालियों से आपका स्वागत करता हूं फॉर गिविंग अस द ब्लेसिंग्स।
ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंचासीन आदरणीय भक्तगण, सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी हमारे भारत देश की शान हो, आन हो। और आप सब एक बहुत सुंदर संकल्प लेकर के आए हैं कि हमारा मन सशक्त कैसे बने और आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करें। तो मैं आप सबको बहुत मंगलकारी भावनाओं से, सद्भाव से, साधुभाव से शुभ कामनाएं प्रसारित करती हूं। ये तो आप सब जानते हैं कि हम सबका जीवन एक समुन्दर की न्याय है। जैसे समुन्दर के अंदर अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे जिंदगी में भी अनेक उतार चढ़ाव आते ही हैं। समुन्दर को समुन्दर इसलिए कहते हैं कि उसमें अनेक प्रकार की लहरें उठती हैं और वो लहरें कईयों को बहुत आनंद देती हैं और कई उस लहरों से बहुत घबरा जाते हैं। जिस पर मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि एक माता उस लहरों का आनंद लेने के लिए समुन्दर के किनारे खड़ी थी और वो बहुत खुश हो रही थी, विभिन्न प्रकार की लहरें उठ रही थी, पर उसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा था। तो क्या देखती है कि लहर एकदम बहुत तेजी से आई उसकी तरफ और वो बच्चे को बहा करके ले गई। तो जैसे ही बच्चा समुन्दर के अंदर गया तो वो माता बहुत घबराने लग गई और भगवान के आगे बहुत आराधना करने लगी कि भगवान मेरा एक इकलौता बेटा है, और आज इस समुद्र ने लहरों के साथ ले लिया उसको। मेरे बेटे को आप वापस कर दीजिए, बहुत दिल से उसने आराधना की। तो क्या देखते हैं, जब वापस लहरें आती हैं तो उसका बच्चा वापस आ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसका ध्यान बच्चे के पांव की तरफ जाता है, तो देखती है उसका एक जूता उस समुन्दर के अंदर चला गया है। फिर उसका वही हाल हो जाता है जो बच्चे के जाने के बाद हुआ। तो आप देखेंगे, वास्तव में देखा जाए तो आज का इंसान की मनोशक्ति, मनोबल, आत्मविश्वास, परमात्म विश्वास इतना कम हो गया है, जो अपने आप को बहुत कमजोर समझने लग गया है। और ऐसा लगता है जब चारों ओर दृष्टि दोहरा करके देखते हैं तो व्यक्ति इस मोड़ पर खड़ा है और सोच रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, किस दिशा में जाऊं किस दिशा में नहीं जाऊं। तो आज मैं इस मंच से आपको यही शुभ संदेश देना चाहती हूं कि आप एक ऐसी पवित्र स्थान पर पधारे हैं जहां पर चारों ओर हरियाली और खुशहाली है। हरियाली और खुशहाली आपको ये संदेश दे रही है कि आप अपने में आत्मविश्वास पैदा कीजिए, परमात्म विश्वास पैदा करेंगे और एक दृढ़ संकल्प करके जाएंगे तो क्या होगा, दृढ़ संकल्प का तेज सूरज के तेज से बढ़कर के है। तो संकल्प एक ऐसा बीज है जिस शुद्ध संकल्प से अनेक प्रकार के सद्गुणों का वास आपके जीवन में होगा। और हरियाली और खुशहाली आपको यही संदेश दे रही है कि सदा मुस्कुराते रहो और मुस्कुराहट बांटो। अब सदा हम मुस्कुराते रहे या मुस्कुराहट अपने से दें, तो उसके लिए सबसे पहले मुस्कुराहट, खुशियां हमारे जीवन के अंदर कैसे आएंगी, क्योंकि आज का मानव जो है अनेक परिस्थितियों के वशभूत है और अनेक बुरी बुरी आदतों के अधीन है और अपने आप को बहुत कमजोर समझने लग गया। तो खुशी तो जैसे छोटे मोटे कोई फंक्शन करते हैं उससे टेम्पररी खुशी होती है, परंतु सच्ची खुशी कब आएगी जीवन के अंदर, जब व्यक्ति अपने आप को पहचान जाएगा। क्योंकि व्यक्ति आज अपने आप को ही नहीं पहचानता, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा संसार के अंदर आने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सत्य का बोध व्यक्ति के पास खत्म हो गया। तो सत्यता, हमारी जानकी दादी जी को आपने सुना, तो मैं कुछ तीन चार दिन पहले ही यहाँ पर एक प्रोग्राम में आई थी, जो वो बार बार एक पांच बातें हम बच्चों को, हम भाई बहनों को माइंड के अंदर डाल रही थी कि जीवन में पांच बातों का होना बहुत जरूरी है, सत्यता, धैर्यता, नम्रता, मधुरता, गंभीरता। ये पांच बातें जिसके जीवन के अंदर आ जाती है, सत्यता, पहले सत्य का बोध हो, सत्य क्या है, आज हम जिस मनोस्थिति के अंदर चल रहे हैं क्या वो सत्य है। आप देखिए, हम सारा दिन बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, ईगो माइंड होकर के रहते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर अनेक प्रकार की बुराइयां, अनेक प्रकार की कमजोरियां आ गई है, जिससे ही हम सारा दिन जूझते रहते हैं। परंतु अगर हमें ये ज्ञान हो जाए कि वास्तव में मैं कौन हूं, मैं इस धरा पर किस लिए आया, आप देखिए हम तीन शब्द बोलते हो, मैं, मेरा, तेरा, मैं कौन, मेरा कौन, तेरा क्या, मैं एक, मैं जो सारा दिन हम करते हैं, मैं की खांसी लगी रहती है ईगो, उसको तो मारना है, परंतु एक सत्य मैं क्या हूं, मैं शरीर हूं क्या, मैं आंखें हूं, मैं कान हूं, मैं ये वस्त्र हूं, नहीं, मैंने इसको धारण किया हुआ है, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मैं शरीर का राजा हूं, परंतु मेरा स्वरूप क्या है, मैं शरीर का राजा हूं तो कौन हूं, मेरा सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप जो है ज्योतिर में बिंदु रूप है, जिसका शरीर के अंदर वास ब्रकुटी के अंदर है। कहते भी है ब्रकुटी पे चमकता अच्छा सितारा। आपने किसी का भाग्य देखना हो निभाग्य देखना हो मस्तक को देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं जो आत्मा सत हूं चित हूं चैतन्य हूं, उसका वास जो इस शरीर का संचालक है जो इस शरीर का राजा है उसका वास ब्रकुटी के अंदर है। मस्तिष्क और हृदय के साथ उसका गहरा कनेक्शन है। मैं इस शरीर के अंदर ब्रकुटी के अंदर वास करते हुए इस रथ का रथी हूं, परंतु आज क्या हुआ मैं अपने आप को भूलकर इस देह के रूपी जो चूला मैंने धारण किया है उसको ही मैंने अपना स्वरूप अपना जो उसका नाम रखा गया मेरे माता पिता के द्वारा नाम रखा गया उसी को अपना नाम रूप देश काल मान लिया। परंतु आज देखिए जब हम इस शरीर का त्याग करते हैं या बोलते हैं प्राणी चल बसा, तो प्राणी कौन निकला कहां से चला और कहां बसा इसका बोध होना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमारे को अपने बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो हमारे जीवन के अंदर शक्ति भी नहीं आ सकती। चाहे हम कितनी भक्ति करते रहे कितना पूजा पाठ करते रहे परंतु ज्ञान नॉलेज इज पावर नॉलेज इज लाइट नॉलेज इज माइट। तो मुझे सबसे पहले अपने आप का ज्ञान होना चाहिए, फिर मेरी मैं हूं क्या, मैं मन बुद्धि संस्कार वाली हूं ये मेरी विशेषताएं हैं, और मैं आत्मा असल में शांत स्वरूप हूं प्रेम स्वरूप हूं ज्ञान स्वरूप हूं प्रकाश स्वरूप हूं आनंद स्वरूप हूं शक्ति स्वरूप हूं। परंतु आज मैं आत्मा जीवात्मा के रूप में अपने आप को नीच नमाना समझने लग गई, जिसके कारण अनेक बुराइयां मेरे जीवन के अंदर आने लग गई। तो सबसे पहले आपको इसी बात के कि बार बार स्मृति यहां दिलाई जाएगी कि अपने आप को जानो मानो फिर उस पर चलो स्वचिंतन करो। जितना स्वचिंतन शुभ चिंतन समर्थ चिंतन आपका हो जाएगा तो शक्तियां आपके पास अपने आप आ जाएंगी और आप अपने आप को बहुत सशक्ति शक्तिवान समझने लगेंगे और अपने आप आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और उस विल पावर के द्वारा जो आप करना चाहो जैसा आप करना चाहो वैसा कर सकते हो। जैसे अभी अभी आपने अशोक भाई का देखा और सुना कि इनको एक साल पहले ऐसा अधरंग सा हो गया और हमने मैं समझती हूँ डेढ़ दो मास पहले मैंने देखा तो ये चल भी नहीं सकते बोल भी नहीं सकते ढंग से बात भी नहीं कर सकते, परंतु आज जब मैं इनको देख रही हूँ तो ये अच्छी तरह से बोल रहे हैं बात कर रहे हैं चल रहे हैं। तो ये सब किसके आशीर्वाद है, ये इनके सत्कर्मों का प्रभाव है। पर सत्कर्मों में सत्कर्म करने की नॉलेज भी तो चाहिए और सत्कर्म करने की जैसे जैसे नॉलेज आती जाएगी वैसे वैसे व्यक्ति अपने आप में सशक्त बनता जाएगा और आने वाली जो भी परिस्थिति है अपनी स्व की स्थिति से उसको चेंज कर सकता है। तो मैं आप सबको यही साधु भाव देना चाहती हूँ कि अपनी समृतियों को बदल लो अपने विचार को बदल लो तो समृति बदल जाएगी वृत्ति बदल जाएगी कर्म बदल जाएंगे तो संस्कार अपने आप बदल जाएगा और आप यहां से एक ये समृद्धि अपने अंदर ये चेतना अपने अंदर जागृत करके जाएंगे कि मैं शुद्ध हूं मैं सशक्त हूं मैं सर्व गुणों की से युक्त हूं। क्योंकि सद्गुण ही हमारी सच्ची पहचान है, व्यक्ति विशेष की पहचान सद्गुण होती है। तो जहां सद्गुणों का वास है वहां विजेता है सफलता उनके पास है। तो मैं आप सबको यही शुभावनाएं देती हूँ कि सफलता और विजय आपका जन्म से अधिकार बन जाए और आप हंसते खेलते और मुस्कुराते हुए जाओ और मुस्कुराहट बांटो। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद अति आदरणीय राजयोगिनी बीके शुक्ला दीदी, आपने हमें बहुत ही अच्छे शब्दों से इंस्पायर किया, ब्लेसिंग्स दी और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कार्यक्रम हम सबके लिए सफल रहेगा। अब धन्यवाद प्रस्ताव हेतु मैं बुलाना चाहूंगा कमांडर आशीष भैनोट जी को, जो हमारे इंडियन नेवी के सर्विंग ऑफिसर हैं। उससे पूर्व एक सूचना देना चाहूंगा कि आज कार्यक्रम की समाप्ति से पूर्व आप सबको सौगात मिलेगी, गिफ्ट मिलेगी, तो एक बार जोरदार तालियां। ये गिफ्ट आपको डायरी और पेन के रूप में मिलेगी, क्योंकि मैं सुबह जब फोल्डर देख रहा था तो मुझे लगा इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसे आप नोट कर सको कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे पॉइंट्स। तो अभी मैंने देखा गिफ्ट में यहां पे आप सबके लिए डायरी पेन रखी हुई है। इसमें जो साउथ इंडिया से हमारे लोग हैं जो थोड़ा हिंदी नहीं समझ पाएंगे, उनको थोड़ी मुश्किल है, तो उनके लिए इंग्लिश में डायरी पेन है, इंग्लिश में डायरी है, तो वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आप सभी को हमारी आदरणीय शुक्ला दीदी अपने हाथ से टोली देंगी, प्रसाद देंगी, तो वो भी सब आप हम लेते हुए जाएंगे डिनर के लिए। तो ये सूचना मेरे को आपको देनी थी। और तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कमांडर आशीष भैनोट जी को, जो इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं और करीब पिछले 22 साल से भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पिछले 14 साल से आप अपने परिवार के साथ इस राजयोग के ज्ञान से जुड़े हैं और वर्तमान में आप हमारे जो एयर इंजीनियरिंग सेंटर है, एलएसी प्रोजेक्ट है बेंगलोर में, उससे जुड़े हैं, तो उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं फॉर वोट ऑफ थैंक्स। प्लीज कम।
ओम शांति। सबसे पहले मैं राजयोगिनी दादी जानकी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने समय निकाल के हमें वीडियो के द्वारा अपनी ग्रीटिंग्स और ब्लेसिंग्स भेजी हैं। हमारे अतिथिगण श्री त्रिवेदी जी कमांडेंट बीएसएफ का भी मैं शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स इस प्रोग्राम के लिए दी हैं। कोमोडोर कुमावत को भी मैं धन्यवाद देता हूं फॉर गिविंग हिज ब्लेसिंग्स एंड ग्रीटिंग्स। हमारे चेयरपर्सन कॉर्डिनेटर अशोक भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर गिविंग हिज ग्रीटिंग्स। राजयोगिनी शुक्ला दीदी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने समय निकालकर और यहां पर आए हैं और अपने ग्रीटिंग्स हमारे साथ हमको दिए हैं। कमांडर शिव फॉर गिविंग द वंडरफुल प्रेजेंटेशन, सिक्योरिटी विंग की पूरी हिस्ट्री और जो भी प्रोजेक्ट्स इस विंग ने किए हैं पिछले सालों में। कर्नल सती जो इस जेसीओ प्रोग्राम के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनका भी शुक्रगुजार करता हूं। ज्ञान सरोवर के सभी भाई बहनें जो हर एक एक डिपार्टमेंट में उपस्थित हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं, जिनके हेल्प और सपोर्ट के बिना ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उन सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं मैं। आखिरी में परमपिता परमात्मा शिव सुप्रीम ऑलमाइटी का भी मैं शुक्रगुजार करता हूं जिनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा हैं और हमेशा देते रहेंगे। ओम शांति।
मैं धन्यवाद प्रस्ताव में दो शब्द जोड़ना चाहूंगा कि एक तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए तो प्रोग्राम सफल हुआ है, जोरदार तालियां, आप सबको धन्यवाद। और साथ ही साथ भैनोट सर का कि उन्होंने आके हमको धन्यवाद प्रस्ताव दिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम मंच पे आसीन हमारे अतिथियों का पहले सम्मान करेंगे गिफ्ट और टोली के साथ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर्स से कि वे गिफ्ट और टोली लेके आए। उसके बाद हमारे जितने भी सर्विंग जेसीओ और इंस्पेक्टर्स आए एक लाइन से, जैसे मैं इशारा कर रहा हूं, यहां से आएंगे और स्टेज के ऊपर से गुजरेंगे और हमारी शुक्ला दीदी से आप टोली और गिफ्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं निवेदन करूंगा बाद में हमारी विमला बहन से कि आप भी मंच पे आ जाइएगा। तो सबसे पहले हमारे आइए रेस्पेक्टेड कमरूर कुमावत सर को सम्मान करेंगे हमारी दीदी। एक बार पुनः कुमावत सर का बहुत धन्यवाद, आज आपको सचमुच में परमात्मा ने ही हमारे पीछे भेजा जिस ढंग से आपने अपना अनुभव सुनाया, और थैंक यू सर। और अभी हमारे श्री प्रखर त्रिवेदी जी कमरन बेसब का भी हम सम्मान करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।